ओम शांति। प्राण प्रिय बाबा के इस अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में आहुति अर्पित करने हेतु और स्वर्णिम संसार के स्वागत हेतु कुछ ऐसी विभूतियां तय की गई हैं जो अक्षरतः फॉलो करते हैं। ऐसी ही एक विभूति हमारे समक्ष उपस्थित हैं, आदरणीय भ्राता मोहन सिंघल जी के रूप में आपका हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ऐतिहासिक व पुराणों में महिमा मंडित उत्तराखंड में सन 1940 में आपका लौकिक जन्म हुआ। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से मास्टर डिग्री प्राप्त कर ONGC में सुपरिटेंडिंग जियोफिजिस्ट के पद पर कार्यरत रहे। जब आप शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी 1962 में कानपुर से यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। बाल्यकाल से ही आप सेवा कार्यों में संलग्न रहे और 28 वर्षों तक विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं देने के पश्चात वर्ष 1996 में बाप दादा की प्रेरणा से वॉलेंट्री रिटायरमेंट लेकर अपने को परमात्मा के हाथों में सौंप दिया और अनवरत सेवा करके बाप का नाम बाला किया। आपको ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को नजदीक से देखने का सुअवसर भी प्राप्त है। जब बाबा ने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया तब वह दृश्य आपने स्वयं अपनी आंखों से देखा। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भ्राता जी वर्तमान समय साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग के चेयरपर्सन हैं। आज हम सभी लाभान्वित होंगे आपके मधुर वचनामृत से। आज का विषय है इंतजार के बजाय इंतजाम करें। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से ओम शांति बोलेंगे जैसा शुरू में यज्ञ में आदि में ओम ध्वनि किया करते थे सभी ब्राह्मण वत्स और ब्रह्मा बाबा मिल करके। अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओ आज की मुरली तो हम सब ने सुनी। क्या था मुरली का मुख्य भाव? हम सब सौभाग्यशाली तो हैं ही, क्योंकि भगवान हमें मिला है, या कहें भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है, तभी आज यहाँ बैठे हैं। लेकिन साथ में बाबा ने परम सौभाग्यशाली वालों की क्या निशानी बताई। आज ही मुरली का सोल ही ये था। क्या था मुरली का मुख्य? कौन है परम सौभाग्यशाली? पद्मा पदम सौभाग्यशाली कौन है? जिनका भगवान स्वीकार करता है। हम सब भगवान के बनते हैं तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना तन मन धन यज्ञ में ऑफर करते हैं और वो सेवा में लगता भी है। लेकिन भगवान स्वीकार किनका करता है, किनका करता है, जो बहुत दिल से निस्वार्थ भाव से बिना रिटर्न की कामना किए हुए भगवान को ऑफर करते हैं। बाबा कहता है मैं लेता तो नहीं हूँ, स्थूल धन की बात अगर करें, लेकिन रखो अपने पास, लेकिन ये समझ करके यूज करो कि ये मेरा नहीं है बल्कि बाबा की अमानत है, तो उससे क्या होगा, वो किसी भी गलत कार्य में इस्तेमाल नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, बाबा यूज करेगा और हम परम सौभाग्यशाली बन जाएंगे। एक तो मुरली का ये मुख्य भाव था, और बाबा ने आज एक ये भी बात बोली, सदा हल्के रहो। हल्के रहने का भाव क्या, कई बार कई परिस्थितियां आती हैं, कई व्यक्ति आते हैं, कई बातें आती हैं सारे दिन में, हमें थोड़ा बहुत भारी कर जाती हैं, तो बाबा ने कहा सदा हल्के रहो। तो ये भी लक्ष्य अगर हम रखेंगे तो आज का जो विषय है, हाँ कौन सा, क्या विषय है आज का, हाँ इंतजार की बजाय इंतजाम में लगो, तो बस हम स्वतः ही इंतजाम में लगे रहेंगे। अक्सर करके कई भाई बहन पूछते हैं भाई कब होगा विनाश, कब तक इंतजार करें, क्या बातें अनेक अनेक दुनिया में होती हैं, कहीं युद्ध होता है, कहीं कोई ऐसी कम्युनल राइट्स होते हैं, प्रकृति की आपदाएं आती हैं, क्या यही विनाश है, क्या ऐसे ही, तो बहुत लौकिक बातों से अलौकिक बात को तुलना करते हुए कई भाई बहन देखते भी हैं और समझते हैं। भगवान की बात को इंडिपेंडेंट रीति से कि ये सृष्टि का परिवर्तन होना ही है, इसीलिए इन बातों को ना देखो, ये बीच बीच में रिहर्सल भी होती है और हमें परिपक्व बनाने के लिए ये बातें आती हैं। जैसे बच्चे का फाइनल एग्जामिनेशन तो एक बार होता है, लेकिन उससे पहले बीच बीच में वर्ष में कई टेस्ट हो जाते हैं, प्रेलिमिनरी हो जाते हैं, तो वो सब उसे फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पक्का करने के लिए आते हैं। इसीलिए उस फाइनल पेपर में हम पास विद ऑनर होके चल सकें, तो हमारा इंतजाम जो है, हम सब सोचते भी हैं, अपनी तरफ से इंतजाम भी करते हैं, किस चीज का, बाबा ने कहा इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो, क्योंकि हमें कोई भी लक्ष्य होता है ना, तो उसको हासिल करने के लिए इंतजाम करने होते हैं। लौकिक में अगर हम देखें तो लौकिक में घर में कोई प्रसंग है, मानो किसी का विवाह है, शादी है, या अलौकिक में कहीं बड़ा मेला, बड़ी सर्विस होती है, तो टारगेट माइंड में होता है ये करना है, तो टारगेट के हिसाब से हमारा इंतजाम चलता रहता है, भाई कोई भी विवाह है, ये इतने मेहमान आने हैं, घर में ये सामग्री होनी चाहिए, ये हर बात का सोच करके इंतजाम करते हैं, तैयारियां करते हैं। तो ऐसे ही अब हमें संपूर्ण बनने के लिए इंतजाम क्या क्या करने हैं, उस रीति से हमें अपने को देखते चलना है, कहाँ तक हमारी तैयारी हुई है, कितनी बाकी है, और उसी बात को बाबा ने एक इशारा भी दिया आज के वरदान में। क्या वरदान था आज का, हाँ? संबंध और कर्म में क्या रहो, रखो सदा स्वार्थ से मुक्त रहो। अक्सर देखा जाए तो सारे दिन भर में जो भी कार्य होते हैं, जीवन में अधिकतर कोई बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हमारा स्थूल या सूक्ष्म स्वार्थ भी होता है। अलौकिक दुनिया में भी आए तो हम वही हैं, पुराने संस्कार लेके, वही पुरानी बातें हैं, पुराना शरीर है, पुराने संबंधों के साथ रह रहे हैं, तो कई बार अलौकिक संबंधों में भी वो हमारे स्वार्थ की बात हमारे व्यवहार से देखने में आती है। तो सबसे पहली बात तो यही है जो बाबा ने आज वरदान में कहा, स्वार्थ से मुक्त रहो। अगर हम इंतजाम कोई करना चाहते हैं परफेक्ट हो, हम अंत समय में तक संपूर्ण कर्मातीत बन जाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा भी बने, तो उसके लिए हमें अपने को हर स्टेप्स पर ये देखना पड़े, क्या ये बात मैं स्वार्थ के वशीभूत होके कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या विश्व का कल्याण इसके अंदर निहित है। तो स्वार्थ की भावना से मुक्त होकर हम कर्म और संबंध में आए, ये बात है। और उसके लिए बाबा ने एक बार काफी समय पहले किसी मुरली में बोला भी था। क्या बोला था? स्वार्थ से कैसे मुक्त होकर के चल सकते हैं? बाबा ने बताया था तीन बातें, उसमें तीन बातों से न्यारे रहो, अलग रहो, पर चिंतन, अब तो याद आया होगा ना, पर चिंतन के साथ और क्या था, पर दर्शन, और साथ में क्या था, पर मत। पर मत, पर दर्शन और पर चिंतन, इनसे, क्योंकि स्वार्थ का मतलब ही यही, शरीर भी तो पर ही है ना, हमारा शरीर, हमें तो आत्मा को ध्यान में रखते हुए कर्म करना है। तो पर दर्शन, पर चिंतन और पर मत, क्योंकि मत ही हमें सबसे पहले संकल्प ही पैदा होता है, और पर मत ही हमें पर दर्शन या पर चिंतन के लिए। इसके लिए बाबा ने क्या कहा था, सदैव, अगर चलो पर शब्द को भूलना मुश्किल है, दुनिया में साथ रहते हैं, तो क्या याद रखो, पर उपकारी बनकर। ये बात क्या सबके उपकार की है, कल्याण की है, उस बात को ध्यान में रखते हुए जितना हम आगे बढ़ते चलेंगे, उतना उतना हम जो बाबा ने आज का विषय दिया है, इंतजाम में लगो, तो अल्टीमेट इंतजाम में लगते जाए। इंतजाम हमें क्या करना है, हमारा इंतजाम का लक्ष्य क्या होना चाहिए, बाबा ने बताया ना, क्या इंतजाम का लक्ष्य होता है, हर चीज का जो लक्ष्य, विद्यार्थी का पढ़ाई का इंतजाम में लग जाता है, पढ़ना है, क्यों, उसका ये लक्ष्य है, एग्जाम आ रहा है, मुझे इतने परसेंटेज में पास होना है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आना है, जो भी लक्ष्य तो हर एक का हाई होता है, तो इसीलिए उस इंतजाम में लग जाना है। अब हम वन बाय वन देखते हैं कौन कौन से इंतजाम है, इंतजाम में लग जाओ, लेकिन कौन कौन से इंतजाम हमें करने हैं, उनको हम नंबरवार देखते चलेंगे, तो स्वतः ही समय प्रति समय वो इंतजाम हमारी बुद्धि में याद आते रहेंगे। कोई भी बात होती है तो संकल्प मन से ही पैदा होता है, और इसीलिए जो बाबा ने कई बार बात बताई है, जैसी स्मृति होती है, तो स्मृति, अगर बाबा ने सबसे पहले हमारी मंशा को परिवर्तन किया है, हमारी स्मृति को परिवर्तन किया है, क्या परिवर्तन किया है। अभी तक हम अपने को शरीर समझते थे, बाबा ने हमारी स्मृति वृत्ति को परिवर्तन किया, तुम आत्मा हो। अभी तक हम लौकिक संबंध में थे, उन्हें ये मेरे माता है, पिता है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, जो भी संबंध लौकिक, बाबा ने सब उस स्मृति को बदल करके मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ और ये आत्मा भी भले किसी को पति का, किसी को पत्नी का, किसी को बच्चे का, माता का, पिता का पार्ट मिला है, लेकिन ये सब पार्ट है। बाबा ने ये स्मृति हमारी को परिवर्तन किया। तो जब स्मृति हमारी चैतन्य में परिवर्तित हो जाती है और धीरे धीरे होने लगी, आप सब यहाँ बैठे हो, कोई 2 साल से, कोई 5 साल, 10 साल, 20, 50 साल, 70, 80 साल से ज्ञान में होंगे, बहुत समय से, तो हरेक की स्मृति में परिवर्तन आया है, जरूर नंबरवार आया है, स्मृति में परिवर्तन आया है, हमें बाहर का नहीं खाना है, बाहर की व्यर्थ बातों में नहीं जाना है, हरेक के जीवन में परिवर्तन आया है। लेकिन उसकी पहचान क्या है? स्मृति जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, क्योंकि हमें अल्टीमेटली ये इंजाम अल्टीमेट तक जाने हैं, एंड रिजल्ट। भाई डॉक्टर भी कहे भाई, एंड पेशेंट आया ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन किया, पेशेंट का डॉक्टर बोले भाई ऑपरेशन तो बहुत बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन पेशेंट की डेथ हो गई। तो ऑपरेशन क्या सक्सेसफुल रहा? डेथ हो गई, शरीर एंड रिजल्ट हमें देखना है, अंतिम हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य रिजल्ट क्या है। तो एंड रिजल्ट हमारे अनुकूल होना चाहिए। इसीलिए एक जैसी स्मृति बदली, स्मृति से क्या है, वृत्ति बदली। वृत्ति क्या है? स्मृति माने कॉन्शियस माइंड में जो बातें रहती है, वो जो बात, वो वृत्ति माने सब कॉन्शियस माइंड, सूक्ष्म स्मृति, जिसे बाबा कहते हैं आपकी वृत्ति तक परिवर्तन हो जाए, स्वप्न भी परिवर्तन हो जाए, स्वप्न में भी पुरानी बात ना आए, वृत्ति तक ऐसी हो जाए जैसे ये इस जन्म का संस्कार ही नहीं है, ऐसे इस जन्म की पुरानी बातें भूल जाए। तो इसीलिए स्मृति बदलेगी तो हमारी वृत्ति, हमारे स्वप्न, सूक्ष्म संकल्प भी सब बदलते जाएंगे, सतयुग के अनुकूल होते जाएंगे। तो एक तो हमारी स्मृति बदल रही है, ये पहचान, और साथ में क्या होगा, इतने तक ही नहीं रहेगा, हमारा नारा भी है ना, जब हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। तो जब हम बदलते हैं तो जग बदलना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारी वृत्ति बदली तो वायुमंडल भी परिवर्तित होता है। वायुमंडल बाहर का जो वातावरण है, वो लोग आते हैं कहते हैं भाई बस ब्रह्मा कुमारी इसका वास्तव में जीवन बड़ा श्रेष्ठ है, सेंटर पे जाते हैं बस वहां जाके बड़ी शांति मिलती है, बहनों के संपर्क में आते हैं, सेंटर में बाबा के कमरे में भी जाते हैं, क्लास में जाओ, कहीं भी जाओ, सेंटर पे इतनी शांति है वातावरण, और मधुबन में भी आते हैं, बहुत यही विशालता का रूप में अनुभव करते हैं। तो स्मृति से वृत्ति भी परिवर्तन होती है, वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता है, और वायुमंडल में क्या होता है, बाबा ने ये भी कहा है, जब हम बदलेंगे, हम जितना भी कहें हम बदले, दुनिया भी कहे, लेकिन विज्ञान जिस बात को सिद्ध कर देता है वो बात दुनिया सहज भाव से मान लेती है। विज्ञान ने सिद्ध करा, आदमी चांद तक गया, दिखा रहे हैं टीवी में, चांद पे उतरा, नीचे आया, वहां ये किया, वो काम किया, ये एक्सपेरिमेंट किया, दिख रहा है ना, विज्ञान ने सिद्ध किया तो दुनिया ने मान लिया, किसी ने डाउट नहीं किया। हम लोग जितना भी बातों को बोलेंगे लोगों के मन में डाउट आ सकता है। तो इसीलिए विज्ञान भी धीरे धीरे ऐसे यंत्र बनाता जा रहा है, जो यंत्र जो है हमें बिल्कुल हमारे बाबा की बातों को सिद्ध करते जा रहे हैं। मुझे कुछ वर्ष पहले रशिया जाने का सौभाग्य मिला था, वहाँ की बहनों ने बुलाया था, क्योंकि उस वर्ष को रशिया ने ईयर ऑफ एनवायरनमेंट घोषित किया था और यहाँ हमारी संस्था ने एनवायरनमेंट पर बहुत बहुत काम किए हैं। अभी तक उनकी विंग ने लगभग 22-23 पर्यावरण जागृति अभियान और आपदा प्रबंधन अभियान भी निकाले हैं, भारत के विभिन्न देशों में, भारत के बाहर भी, नेपाल में भी। तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया था, तो रशिया का एक साइंटिस्ट होके गया है, उसका नाम था किरलियन। तो वो किरलियन साइंटिस्ट ने ऐसा कैमरा बनाया था कि जब व्यक्ति का फोटो खींचते हैं ना, तो फोटो के साथ साथ उसका ऑरा भी आ जाता है। ऑरा माने प्रकाश का आभा मंडल, और उससे उस व्यक्ति का पता चल जाता है ये व्यक्ति अंदर से कैसा है, क्या इसके विचार है। जैसे महापुरुष होते हैं, उनका फोटो देखो, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, मदर टेरेसा, क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, कोई भी महान पवित्र आत्माएं जो होके गई हैं, वो आत्माओं का चित्र जब बनाते हैं ना, तो उसके पीछे उनका लाइट का ताज भी दिखाते, आभा मंडल। और उस आभा मंडल की ये विशेषता होती है इन महान आत्माओं का, देखो लाइट येलो या गोल्डन कलर या वाइट, बहुत अच्छा आभा मंडल दिखता है, उससे उनकी पर्सनैलिटी और डेवलप होती है। देखने से ही बड़ा सुकून का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्माओं ने अपने मन तक ज्ञान को, अपने व्यवहार तक वो लाए थे, और तो उनका आभा मंडल ऐसा हुआ। वो साइंटिस्ट भी वहां पर हमसे मिलने आया, उसके साथ साथ हम एक दो दिन सेंटर पर ही रहा। और ये आभा मंडल केवल यही नहीं दिखता, हमारे एक एक अंग का आभा मंडल होता है। अंगूठा है, उंगलियां है, नाक है, कान है, हर एक का चित्र निकालेंगे तो उसका आभा मंडल अलग होता है। और ये जो सम टोटल सबका मिला के टोटल आभा मंडल, वो देवी देवताओं और महान आत्माओं के चित्रों में दिखाते हैं। तो उसने काफी आभा ये निकाला, और निकाल करके फिर कहा कि मैं इसको एनालाइज करता हूँ और आपको 2-3 दिन के बाद रिजल्ट दूंगा कि कैसा होता है। और उसने बताया कि मेरे पास दुनिया के सब तरफ के लोग आते हैं, रशिया, अमेरिका, रूस, हर धर्म वाले आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, कोई भी हो, सब धर्म वाले, सब देशों के लोग आते हैं, सबका फोटोग्राफी करने का मुझे मौका मिला है, सबके आभा मंडल मैंने निकाले हैं। और जब वो मिला, उसके बाद उसने एक बहुत अच्छी बात बताई कि सबके आभा मंडल, लेकिन जितना ब्रह्मा कुमारी वालों का आभा मंडल स्पष्ट, क्लियर और लाइट वाला होता है, वो दुनिया में और किसी का नहीं होता। ये हम सबके लिए गौरव की बात है ना, क्योंकि बाबा ने जो हमें सिखाया है, बाबा ने कहा, बाबा हमेशा कहते हैं, अभी भी बाबा ने कहा, पिछली बाबा की प्रत्यक्षता कब होगी? धीरे 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 हम बच्चों की भी जैसे जैसे ये प्रत्यक्षता हो रही है, अल्टीमेटली बाबा ये कहता है ये नहीं वो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छे हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, इनका जीवन अच्छा है, नहीं, अल्टीमेटली बाबा की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। इनको सिखाने वाला कौन, इनको किसने ज्ञान दिया, किसने इनका जीवन ऐसा बनाया कि आज ये दुनिया में सबसे न्यारे हैं। विज्ञान ने सिद्ध किया, दुनिया अब धीरे धीरे मानती जा रही है। तो ऐसा ही हमें बनना, इसीलिए बाबा कहता है अब आप बन के दिखाओ, केवल ज्ञान सुनाने के आधार पर नहीं। बहुत सुना लिया ज्ञान, सुनते भी हैं, अच्छा अच्छा भी करते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, सुनने के साथ साथ वो बाबा ने तीन बातें जो बताई हैं, चाल चलन और चेहरा, इन तीन से वो ज्ञान आपका हर घड़ी प्रत्यक्ष होना चाहिए। वो है सच्चा इंतजाम कि हमारे चाल चलन और चेहरे से प्रदर्शित होता रहे। वो कब होगा, ये सब शुरू होता है मन से, संकल्पों से, विचारों से। इसीलिए कहा है मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कैसे पहचाने हाँ मेरा इंतजाम ठीक हो रहा है और मैं कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ती जा रही हूं आत्मा, कैसे पहचाने, अपने विचारों से, संकल्प से। संकल्प होते हैं तो उसे हम तीन रीति से चेक कर सकते हैं। पहला, क्वांटिटी ऑफ थॉट, कितने हमारे विचार आ रहे हैं। जितने हमारे कमजोर विचार होंगे उतनी संख्या बहुत ज्यादा होगी, क्वांटिटी। आप देखो 10 विचार आते हैं, अल्टीमेटली एक या दो विचार बुद्धि उसे स्वीकार करती है। एक है क्वांटिटी ऑफ थॉट, और आप अनुभव करते होंगे कि जब आप ज्ञान में नहीं थे तो कितने विचार आते थे, और अब धीरे 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 जितने ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ थॉट। क्वांटिटी ऑफ थॉट माने विचारों की संख्या, दूसरी बात है क्वालिटी ऑफ थॉट यानी विचारों की गुणवत्ता, कितने गुणी संस्कारी हमारे विचार, अच्छे विचार है। तो क्वांटिटी क्वालिटी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्वांटिटी अगर ज्यादा होती है तो विचारों की क्वालिटी कम होती है, और अगर क्वालिटी बढ़ा ले हम किसी तरह है तो क्वांटिटी अपने आप कम हो जाती है। तो क्वांटिटी को हमें कम करने के लिए क्वालिटी ऑफ विचार को बढ़ाना होता है, उसी का नाम मेडिटेशन है, योग है, याद है। बाबा ने कहा योग और कुछ नहीं, याद की यात्रा, बाबा की याद, वो ही योग है। तो क्वालिटी ऑफ थॉट, पॉजिटिव क्वालिटी ही आते रहे, विचार मन में नेगेटिव ना आए। तो क्वालिटी ऑफ थॉट जितने आएंगे, अच्छे अच्छे विचार, गुणी विचार, जो बाबा ने बताया है आत्मा के गुण जो साथ हैं, उन साथ से लगते हुए सुख शांति आनंद पवित्रता प्रेम ज्ञान और शक्ति, जो ये बातें बताई है बाबा ने, इनसे संबंधित जो भी विचार है वो क्वांटिटेटिव है, उसकी हम बढ़ाते चलेंगे तो क्वांटिटी यानी विचार जो कलयुगी दुनिया के घृणा ईर्ष्या द्वेष नेगेटिविटी के विचार आते हैं वो अपने आप ही कम होते जाएंगे। तो इसका मतलब मेरा फाइनल पेपर के लिए इंतजाम जो है वो ठीक होता जा रहा है, एक ये मैं देखता चलूं। और तीसरी बात डायरेक्शन ऑफ थॉट, विचारों की डायरेक्शन क्या है। जब डायरेक्शन अगर एक ही होती है तो विचार शक्तिशाली होते हैं, और डायरेक्शन बहुत, अभी हमें घर का विचार आया, खेल का आया, धंधे का आया, पैसे का आया, संबंधियों का आया, कुछ भी जितने विचार बहुत एट ए टाइम डाइवर्सिफाइड होंगे, अलग अलग डायरेक्शन में होंगे, उतने विचार कमजोर होंगे। वो बचपन की कहानी तो सबको याद है, अलग अलग लकड़ियां होती हैं, तोड़ना आसान होता है, इकट्ठा गट्ठर बांध दो फिर एक तो नहीं तोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग विचार होंगे, लेकिन किसी तरह हम उन्हें केंद्रित कर लें। इसीलिए बाबा समय प्रति समय हमें सावधानी देते चलते हैं। तो मन को ये देखना है। मैंने अंतिम दिनों में 18 जनवरी के करीब, मुझे सौभाग्य मिला 1962 में भले ज्ञान में आए, 62 से लगातार ज्ञान में चलते रहे, बाबा मामा से मिलते रहे, सब कुछ मधुबन आते रहे। बाबा पहले बाहर जाते थे, कानपुर बाबा गए, वहाँ भी बाबा से मिलना हुआ, दिल्ली 2 बार आए, दिल्ली में भी 2 बार मिलना हुआ, बाबा के महावाक्य तो सब तरफ। लेकिन जो बाबा के अंतिम दिन 18 जनवरी को, हम बहुत दूर पोस्टेड थे आसाम में, धनबाद इंजीनियरिंग पास करने के बाद ONGC में ज्वाइन किया, और ONGC में पोस्टिंग हमारी आसाम में। लेकिन बाबा ने अंतिम समय बुला लिया, और मुझे अंतिम समय बाबा की कर्मातीत अवस्था अपनी इन आंखों से देखने का सौभाग्य मिला 17 और 18 जनवरी को। वो कुछ बातें भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे वो बातें हम सब भी धारण करके कर्मातीत बन जाएं, और हमारा इंतजाम इतना पक्का हो जाए कर्मातीत का कि बस हम विजय रतन विजय माला के मण के बन जाएं। तो बाबा को देखा, मन की भी क्या पहचान है कि हमारा मन कर्मातीत अवस्था तक पहुंच गया। तो मन, बाबा से हम हमेशा मिलते थे, बाबा से बातें करते थे, बाबा कहते हाँ बच्चे क्या पूछना है, क्या करना है, ये बाबा पूछते थे, हम बताते थे, पूछते थे, और बाबा उसका उत्तर देते थे, समाधान देते थे। लेकिन जब हम 17 और 18 जनवरी को 2 दिन में, चूंकि और बाहर की पार्टी नहीं थी, लगभग 5-6 बार बाबा से मिलने का अलग से सौभाग्य मिला, तो बस बाबा के सम्मुख जाते थे कि बाबा से ये पूछेंगे, इस बात को पूछेंगे, बस गए, बाबा ने जरा सी दृष्टि दी, और दृष्टि देके बाबा कहते बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। मतलब हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा बस दृष्टि में देखते ही मन की बात को परख जाते थे। ये है पक्के इंतजाम का लक्षण, यानी बाबा ने अपना इंतजाम इतना पक्का कर लिया था कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने का कि सबके मन के भावों को पढ़ लेते थे। और वो ही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके मन में कोई अपना व्यर्थ संकल्प ना हो, जिसकी बुद्धि बहुत ही क्लीन और क्लियर हो। अपनी मन बुद्धि ऐसी होगी वो दूसरे की बात के मन की बात को तुरंत ही पढ़ सकेगा। तो एक तो हमारा लक्ष्य ये रहे, दूसरी बात जब ये लक्ष्य रहेगा तो देखा मैंने, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 5-6 बार जब भी पूछने गए तो हमेशा बाबा मन को पढ़ के उत्तर देता। ये कर्मातीत अवस्था का पक्के इंतजाम का लक्षण। दूसरा और उसमें क्या देखा हमने कि जब हमारे वृत्ति स्मृति पक्की हो जाती है तो तीसरी स्थूल चीज तो देखने में, वृत्ति और स्मृति देखने में तो नहीं आती, लेकिन जितनी वृत्ति और स्मृति पावरफुल हो जाती है उतनी दृष्टि, ये स्थूल चीज है। तो बाबा के नैन भी इतने डिवाइन थे, वैसे ही पर्सनैलिटी स्थूली बाबा की इतनी अच्छी ग्रेट थी, लेकिन उन नैनों में अगर डिविनिटी भी भर जाए, उस पर्सनैलिटी में तो सोने में सुहागा है। ऐसे बाबा के नैन थे, बस नैन में देखते ही जैसे लौकिक में आपस में प्यार होता है, स्नेह होता है, नैनों से ही झलकता है एकदम दूसरे के लिए प्यार। ऐसे हरेक को लगता था बाबा जितना मुझे प्यार कर रहा है उतना किसी को नहीं करता। तो स्मृति वृत्ति से दृष्टि में ही आएगी बात। और बाबा कहता था जब बाबा से मिलने आओ बच्चे आओ, ऐसे बाबा हाथ फैला देता था और हम बाबा की बाह में एकदम आ जाते थे। उससे क्या होता था, आ गए बाह में और विदेही हो जाते थे, अशरीरी, क्योंकि बाबा ने अपनी प्रैक्टिस इतनी की हुई थी। फिर बाबा हमें बुलाता था एकदम ऐसा, आओ बच्चे आओ, एक को निकल के दूसरे को मिलना होता था। तो जितना जितना उनको बाबा ऐसा थपथपाता था उतना फिर आने की दिल ना भी हो शरीर में, फिर भी आना पड़ता था, क्योंकि एक के बाद एक पार्टी में मिलना होता था सबको। तो भाव यह है कि हम अपने को ऑडिट भी करते जाएं, चेक करते जाएं। सिर्फ हमने मुरली पढ़ ली, सुन ली, ज्ञान योग धारणा कर ली, सेवा कर रहे हैं, ये ही नहीं, ये तो बहुत स्लो स्पीड है। बाबा कहते हैं अब ज्ञान में चलने का समय भी गया, हाँ जंप देने का, हाई जंप देने का भी समय गया, अब कौन सा समय है उड़ने का। एकदम उस उड़ने में भी बाबा कहता है आत्मा रॉकेट की तरह है। कल परसों भी बाबा ने मुरली में बोला ना, तो रॉकेट की तरह भी ऐसी हो कि बस एक संकल्प किया और तुरंत ही पहुंच गए। तो ये बाबा को हमने प्रैक्टिकल में ये देखा अंतिम दिन में। और क्या देखा साथ में, अक्सर करके जब हमारा अंत समय आता है दुनिया में भी कहते हैं, तो व्यक्ति जो है वो कई बार प्राण तन से नहीं निकलते, अटके रहते हैं। और वो क्यों, क्योंकि जो व्यक्ति मरणशैया पर होता है या तो उसका किसी से बहुत स्नेह होता है, वो याद आता है, उसका वो इंतजार कर रहा होता है, या जिससे थोड़ी बहुत दुश्मनी हो, कटुता हो संबंधों में, वो व्यक्ति याद आ जाता है, उसका ख्याल आ जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा है किसी से भी ना अति स्नेह हो ना कोई कटुता हो। स्नेह होगा वो भी आपको संपूर्ण नहीं बनने देगा, क्यों, क्योंकि कोई भी बात होगी बस उसको बताए बिना रह नहीं सकेंगे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए किसी से कटुता हो। कबीरदास जी भी बोल के गए ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो ये अवस्था जब होगी अंत में तो हमारा इंतजाम पक्का होता चला जा रहा है, ये समझो कि हम सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और जब दृष्टि होती है, पवित्र वृत्ति हो गई, स्मृति हो गई, दृष्टि हो गई, तो कृति कर्म तो स्वाभाविक ही, कर्म तो अभी ही हमारे सभी के श्रेष्ठ तो हो गए हैं। लेकिन ऐसा चाल चलन हो फरिश्तों जैसा। ब्रह्मा बाबा को हमने देखा उन दो दिनों में, तो खास करके बिल्कुल चाल चलन हाथ पीछे किए हुए, बहुत धीरे धीरे धीरे, फरिश्ते एकदम कभी दौड़ते हुए नहीं दिखाते, फरिश्ते जल्दबाजी में नहीं, शांत चित से, शांत मन से, उनकी कर्मेंद्रियां भी शीतल होती हैं। बाबा भी धीरे 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 ऐसे, और अंतिम दो दिनों में तो यही देखा, फरिश्तों जैसी चाल चलन और चेहरा भी, बस चेहरे की तरफ देखते थे। कई बार तो आंख मलनी होती थी देखनी कि बाबा ही है, या कभी श्री कृष्ण, कभी नई दुनिया का साक्षात्कार, कभी साक्षात्कार माने ध्यानावस्था नहीं, लेकिन वहीं पर ही बाबा, क्योंकि इतने तक जब हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंच जाएंगे, हमारा परफेक्ट इंतजाम हो जाएगा ये फाइनल स्थिति का, तो क्या होगा, हमारे एक एक अंग हमारा हमारे ज्ञान को रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऐसे कृति हो जाएगी और फिर वैसा ही वायुमंडल बन जाएगा। जैसे लौकिक में दुनिया में कभी किसी के क्रिमेशन में जाओ, कोई डेड बॉडी है, शमशान घाट जाओ, कोई कहता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वातावरण ही इतना वैरागी होता है कि मन के अंदर वैराग आने लगते हैं। ऐसे ही कर्मातीत अवस्था वाली आत्माओं के जैसे जैसे संपर्क में आएंगे तो स्वतः ही वो वातावरण ऐसा होता है, देखते हुए एकदम वो वातावरण, उनके वाइब्रेशन, उनका ऑरा, उनका इतना शक्तिशाली होगा, ये पहचान है, ये हमारा इंतजाम सही डायरेक्शन में चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे बोल, और सबसे बड़ी बात यह, भगवान हमें परफेक्ट बनाने में कितनी मदद कर रहा है, बाबा पहले से ही आने वाले पेपर बता दिए है। अभी बाबा ने कहा तुम बच्चों में दो शक्तियां विशेष होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि लौकिक दुनिया में भी कहते हैं निर्णय शक्ति ऐसी हो, और निर्णय शक्ति के साथ साथ परखने की शक्ति ये हो, और निर्णय परखने की शक्ति जितनी पावरफुल होगी तो ऑटोमेटिकली विपरीत परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भी शक्तिशाली होती जाएगी। खाली परख लिया लेकिन विपरीत परिस्थिति आ भी गई और सामना नहीं कर सके सफलतापूर्वक तो फायदा क्या हुआ। इसीलिए, और इसके लिए बाबा ने वर्तमान समय, बहुत समय से बाबा दो बातों को खास कह रहा है। पहली बात, रहम दिल, बहुत बड़ी आवश्यकता है रहम दिल की। क्यों? क्योंकि जितना हम रहम दिल होंगे ना, उतना हम अपने किसी भी भाई बहन को इस दृष्टि से नहीं देखेंगे, उसने ये गलती की, क्यों किया, कैसे किया, नहीं, रहम आएगा उस पर, बाबा इसको भी सद्बुद्धि दो। और जितना जितना रहम दिल होते जाएंगे और उतनी उतनी हमारी क्षमा की शक्ति भी बढ़ती जाएगी, महान आत्माओं में क्षमा प्रदान करने की। नहीं तो होता क्या है, किसी भी भाई बहन को देखा, कोई गलती देखी, कमी देखी, वो बात हमारे दिल में घर कर जाती है, निकलती नहीं है। अब उसकी तो पुरुषार्थ से निकल भी जाए जिसमें कमी है, लेकिन हमारे अंदर तो वो और बात गहरी होती जाती है, हम तो कमजोरियों के भंडार बनते चले जाए। इसीलिए क्षमा की शक्ति, बाबा इस आत्मा को भी बुद्धि दो, बस मैं इस आत्मा को क्षमा करती। हम बात को रख लिया, यानी मैं क्षमा नहीं कर सका, अंदर मैंने स्वीकार कर लिया और क्षमा कर दिया, यानी कि उसकी बात उस तक रही, मेरे तक न आई। तो हर एक से हम क्षमा मांगते चलें और क्षमा करते चलें। किसी से भी हमारा अगर मन मुटाव देखने में आए, ब्रह्मा कुमारी संस्था के बीके भाई बहनों के बीच में भी, उसमें भी ये दिखने में आए कि इस आत्मा के अंदर ये भाव जो है, ये क्षमा का भाव मेरे अंदर कितना है कि इसकी कमी को मैंने माफ कर दिया। और वो कब होगा? जब हम एकाग्रता की शक्ति को धारण किया। अभी क्या है, हम चाहते हैं, थ्योरेटिकली नॉलेज है, लेकिन एकाग्र चित नहीं हो पाते, इसलिए रहम दिल भी नहीं हो पाते। और इसलिए जो बाबा ने कहा, अब आप बच्चों को अंत समय में एक शक्ति की विशेषता जरूरत है, दातापन, देते चलो, देते चलो, दे देंगे तो तब जब खुद भरे होंगे, खुद के अंदर सहन शक्ति और प्रेम आनंद ये सब शक्तियां नहीं होंगी तो देंगे कहां से। तो इसीलिए दातापन का गुण, सबको लगता था बाबा मामा से, हाँ ये दाता है, जितना बाबा मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता, दातापन की अब दुनिया हमसे वो एक्सपेक्ट करती है, दुनिया के सामने साकार रूप में तो बाबा मामा नहीं है, दादियां नहीं है, हम सब ही उनके सामने प्रत्यक्ष मॉडल हैं। तो इसीलिए हमें अपने को ऐसा करके चलना पड़ेगा, और जितना जितना हम ये सब करते चलेंगे हमारी वाणी से प्रत्यक्ष होता चलेगा। और उसका प्रमाण क्या, जो बाबा ने कहा है ना, सच्चे दिल पर सावर ब्राजी, सत्यता। जितने हम सत्य होते चले जाएंगे उतना उतना बाबा को प्रिय होते जाएंगे, और बाबा को प्रिय होते जाएंगे तो उतना उतना क्या होगा, बस हमें सोचना है कार्य का, कार्य हुआ पड़ा है। अभी तो थ्योरेटिकली कहते हैं कल पहले भी किया था, वो होना चाहिए, लेकिन नहीं अगर होता है उतनी सफलता नहीं होती है, तो हमें ये देखना चाहिए क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कार्य जो है ना, वो कार्य जो है हमने बाबा को नहीं सौंपा अभी तक पूरा। बस सोचे बाबा तक पहुंचे और बाबा चले, बाबा पूरी वसुधा को उसी दृष्टि से, सृष्टि की आत्मा है, हर एक को वसुधैव कुटुंबकम का जो गायन है तो वो ही होना चाहिए। हमें कोई भी भेद भाव किसी प्रकार का न हमारे अंदर हो न किसी के लिए हो, कोई भी बात। और दूसरी बात साथ में जो एक है, ये कब आएगा बात, जियो और जीने दो। ये होता क्या है, हम समझते मैं बड़ा हूं, मैं अनुभवी हूं, इसे मेरे कहने से चलना चाहिए, इसे नहीं चलता तो हमारे मन में गलत भावना आती है। नहीं, बताना समझाना हमारा फर्ज है, छोटे को बता दिया और उसके बाद वो माने न माने, चले न चले, उसके भाग्य पर निर्भर करता है, वो होना चाहिए। और साथ में बाबा ने कहा है सबके प्रति ऐसा भाव। मैं देखता था जब गुरुवार का दिन था, संदली पर संदेशी बैठी हुई होती थी, आती थी, बाबा की मुरली पूरी हो जाती थी, फिर संदेशी आती थी, बस भोग लगाया, और जब भोग के बाद आई लौट के तो बाबा हाथ में भोग लेते थे, डब्बी खोली, जो भी बना हुआ होता था भोग करके बाबा कहते थे आओ बच्ची, आओ आओ बच्ची। हम लोग देखते थे बाबा किस बच्ची को बुला रहा है, अपने हाथ से भोग खिलाना चाहता है, तो बस आओ बच्ची। फिर ध्यान जाता था पीछे के दरवाजे से, एक छोटी सी चिड़िया बुलबुल होती थी, वो फू कू 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 करती हुई बाबा के पास फुदकती हुई आती थी, नीचे से ऊपर टेबल पर चढ़ी, टेबल से बर्तन, भोग के बर्तनों तक आई, बाबा की हथेली पर आई, और फिर वहां पर भोग स्वीकार कर। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा के ईच एंड एवरी प्राणी से हमारा ऐसा ही स्नेह हो। चलो इसके लिए तो लोग कहेंगे तो चिड़िया है, हार्मलेस प्राणी है। एक कई घटनाएं होती थी, सांप आया, सब मारने को तैयार एकदम, बाबा ने कहा नहीं नहीं, बच्चे को नहीं मारो, कोई तकलीफ नहीं दो, बाबा बहुत जहरीला सांप है, इसको तो मारना ही श्रेष्ठ है, नहीं नहीं नहीं। बस बाबा उसके सामने खड़े हुए, थोड़ा सा जैसे शांत होकर उसे दृष्टि जैसे दे रहे हैं, धीरे धीरे शांत हो गया। बाबा ने कहा एक भाई को, इसे पकड़ो, मटके में बंद करो, कपड़ा बांध के जंगल में छोड़ो। सबके लिए प्रेम भाव, वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी अंतिम तैयारियां हैं। केवल योग ज्ञान ही करते रहे नहीं, अपने लिए भी करें, क्योंकि देवताओं के एक लक्षण है आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। शरीर तो पांच तत्वों का बना है, तो आत्मा को तो पवित्र कर रहे हैं ज्ञान योग धारणा सेवा से, लेकिन रोज इन पांच तत्वों को भी हम 5 मिनट कम से कम योगदान करें। वो पूरी विधि बाबा ने कुछ मुरलियों में बताई हुई है कि हाँ, अंत समय तक हमें याद रहे कि कैसे योगदान किया जाता है, तत्वों से अपने को मैच करते चले, तत्वों के गुणों से। तत्व जो होते हैं, तत्वों के गुणों से मैच करते चलेंगे। मानो जल है, जल में क्या गुण है? जल बड़ा फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है, जिस बर्तन में लो उसमें एडजस्ट हो जाता है। ऐसी मेरी नेचर भी ऐसी एडजस्टेबल हो, हर एक के साथ हम एडजस्ट होके चल सकें, किसी के साथ ये ना हो। इनके साथ एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, इनके साथ सहज है, नहीं, हर एक के साथ एडजस्ट। और इसीलिए जल हमेशा आगे बढ़ता है, जल और हमेशा आगे बढ़ता है, शीतलता प्रदान करता है, अपना स्थान शरीर में भी 70% से ज्यादा जल है। तो इसीलिए जब भी हम योगदान करें, ये जल देवता, हमने भी अपनी प्रैक्टिकल उसमें देखा, जब हमारा अभियान निकला उस अभियान में हम देखते चले, बाबा ने बोला था तो केरल में अभियान था, समुद्र तट था, पहले दिन बाबा की मुरली चली थी, अब ये भी देवता हैं, प्रकृति भी, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, धरती माता, ये सब देवताओं को आप आवाहन करो, आप भी देवता हो, ये भी देवता है, देवता देवताओं से शेक हैंड करने आना चाहिए, उनके चरण स्पर्श। आप तो चैतन्य देवता, होवनहार देवता हो, वो तो जड़ देवता है, तो इसीलिए क्या करो, उनका आह्वान करो। तो हमने अगले दिन एक्सपेरिमेंट के तौर पर सुबह 4 बजे सेंटर की बहनें और हम लोग 12 भाई बहन थे, 15-20 के करीब भाई लोग गए समुद्र के किनारे जाकर, बहुत दूर, बिल्कुल शांत था समुद्र, और हम लोग जल को जैसे कर रहे हैं, जल देवता आप भी देवता हो, देवता के रूप में पूजे जाते हो, हम सब चैतन्य होवनहार देवता आपके पास आए हैं, हम लोग भी एडजस्टमेंट की शक्ति धारण कर रहे हैं, शीतलता की शक्ति धारण कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, आप भी यहाँ पर हो और आप तक हमारी अगर भावनाएं पहुंच रही हैं तो आओ हम लोग शेक हैंड करें, आप हमारा चरण स्पर्श कर रहे, आओ। एकदम शांत समुद्र, कोई लहरें नहीं, कुछ नहीं। 4 बजे से योग किया, 4:15 बजा, 4:30, 4:45, 5:05 थे तो कहीं से बहुत तेज लहर आई और पानी की लहर आके हम लोग इतनी दूर बैठे हुए थे, आए हम सबके चरण स्पर्श किए और पानी की लहर चली। ये देवताएं, इनका गायन आज तक है जरूर इन्होंने, ऐसा तो हमारा वार्तालाप होना चाहिए और ये वार्तालाप सबके साथ चलता रहे। यहीं पर ही मैं समाप्त करना चाहूंगा, समय हो रहा है। तो हम लोग प्रकृति के तत्वों को, हम अपने को भी पवित्र बनाते चलें, जब आत्मा और पवित्र दोनों शरीर दोनों पवित्र हो जाएंगे तो हम सब लोग बाबा के साथ इकट्ठे ही परमधाम चलेंगे और फिर परमधाम से सतयुग में बाबा के साथ श्री कृष्ण के रूप में वहां पर पार्ट बजाने आएंगे। ओम शांति, ओम शांति। हम सब लोग जस्ट 1 मिनट यही बात को योगदान करें, मैं इतनी देर में उठ जाऊंगा, और हम सब लोग 1 मिनट कम से कम प्रकृति को, तत्वों को और सृष्टि की समस्त आत्माओं को योगदान करें।
कल कल करती। पल बहती कल कल करती समय की नदियाँ।